गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने इस उद्देश्य से कि गुरु जी के बिना मोक्ष नहीं हो सकता और यदि मैं गुरु नहीं बनाऊंगा तो आने वाले समय में ये कहा करेंगे, काल का दाव लग जाएगा कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, बगैर गुरु के ही बात बन जाएगी और काल फिर मेरी आत्माओं को धोखा दे देगा। इसलिए उस परमेश्वर ने, अब वो ऋषि किसी के ज्ञान में तो सुने को नहीं, कौन स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण पंडित, परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाने का कौन सा तरीका अपनाया, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया जब परमात्मा 5 वर्ष के थे कि लीला में शरीर कर रहे थे 5 वर्ष के, उस समय 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण किया और पंच गंगा घाट के ऊपर काशी में जहां रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे वहां एक घाट बना हुआ था पक्की पौड़ियों का, उन पौड़ियों पर जाकर कबीर परमेश्वर जी 2.5 वर्ष के बच्चे के रूप में लेट गए। स्वामी रामानंद जी सुबह सुबह जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, गर्मियों के दिन थे, जो ही वो नीचे पैड़ियों से उतर रहे थे परमात्मा कबीर जी 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके लेटे हुए थे, स्वामी रामानंद जी की खड़ाऊ सिर में लगी, काठ की खड़ाऊ पहना करते थे, खड़ाऊ लगते ही परमात्मा ने रोना शुरू किया जैसे बालक चिल्लाते हैं। रामानंद जी एकदम बहुत तेजी से झुके, अब किसी बच्चे को चोट लगी, क्यों दया होती है संत में, चाहे वो किसी का भी साधक है, अगर वो संत लक्षण है उसमें तो उसमें दया अवश्य होती है। एकदम नीचे झुके थे, गले में एक कंठी होती है, एक मनिये की, तुलसी के लकड़े के, लकड़ी का एक ही मनका होता है, वो रामानंद जी अपने गले में डाले रखा करते थे और अन्य जो शिष्य बनाते थे उनके भी एक वही माला देते थे, कंठी बोलते उसको, एक मनके की, और वो प्रतीक होता था कि ये वैष्णो परंपरा से रामानंद जी का शिष्य, वैष्णो साधु के प्रतीक होती थी और एक तिलक लगाते थे ऐसे। रामानंद जी जैसे झुके उनके गले की वह कंठी निकल कर कबीर परमेश्वर के गले में डल गई। रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, सिर पे हाथ रखा छोटे बच्चे के, रो ना बेटा, बैठ जा यहां, परमात्मा चुप हो गए, उन्हें तो लीला करनी थी। और कहा बेटा, रामानंद जी कहने लगे कि बेटा तू यहां बैठा रहे, मैं स्नान कर लेता हूं, आश्रम में ले चलूंगा और दिन में जिसका भी होगा पता करके तुझे भिजवा दूंगा, डरना मत। रामानंद जी स्नान करने लगे, परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए, उनका काम पूरा हो लिया था। अंतर ध्यान होकर के अपने मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा की झोंपड़ी में आकर सो गए। कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद, अब रामानंद जी ने 1400 ऋषि बना रखे थे, 1400 चेले थे ऋषि जो प्रचार करते थे रामानंद जी किसे ग्रहण ज्ञान का और रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे कि ये वेदों और गीता और पुराणों के मर्मज ज्ञाता है। विवेकानंद जी जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु पुराण के अंदर सुना रहे थे विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं और ये सब के मालिक हैं, ये सब सृष्टि रचनहार हैं, यही तीन रूप धारण करके सृष्टि सती थी और संहार का कार्य करते हैं, ये स्वयं अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है। अब उधर से परमात्मा कबीर जी जैसे वैष्णव तिलक लगाते हैं ऐसा लंबा तिलक नाक के ऊपर कर माथे तीन चंदन का सफेद तिलक ला रखा और परमात्मा छेड़छाड़ करे बिना रहा नहीं करते क्योंकि वो तो आए इस उद्देश्य थे। तो दुष्स्वामी जी ने विवेकानंद जी ने अपना भाषण पूरा कर लिया, सत्संग पूरा कर लिया, जब कबीर जी खड़े हो गए और करबद्ध होकर कहने लगे कि स्वामी जी एक शंका है मेरे मन में, उसका समाधान चाहता हूं। विवेकानंद जी ने सोचा ये कोई वैष्णव भगत है, पूरा तिलक ला रहा है, होगा बच्चे का कोई शंका ना, बता देता हूं। 5 वर्ष की आयु थी जब परमात्मा ने पूछा कि कौन ब्रह्मा की पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। अब इस बात के ऊपर समस्या पैदा होगी, कहने लगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो अजरवामर है, सर्वेश्वर है, शंभू है, फलाना है। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता पढ़ कर देखिएगा, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में उसमें इनके विष्णु जी के माता पिता भी हैं। अब स्वामी जी वहीं पर ले रखी थी उसने, वो उसी समय खोला शिव पुराण को और देखा, देख भी लिया लेकिन माना नहीं। अपना आत्माओं परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंश अंजन। के ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल सदा काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन भी कहते हैं और दुर्गा इनकी माता है, ये देखिएगा शिव पुराण। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है, ये सारा विवरण इसलिए दिया जाता है कि किसी के शंका ना हो जाए कौन सी शिव पुराण है, कहां से आ रही है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब देखिएगा ये रुद्र संहिता अध्याय नंबर 5 हम नीचे देखेंगे पृष्ठ नंबर 98 से, यहां से आ जाइए। 5वां अध्याय, अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता मह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले, ये छठा यहां प्रारंभ हो गया, छठे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन, ये 99वां पृष्ठ पे ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन अपने पुत्र को कह रहा है ब्रह्मा जी नारद को, देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। नारद ने पूछा था कि इनकी सृष्टि कैसी हुई सारे संसार की, तो ब्रह्मा जी बता रहा जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखते थे न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी कोई पता नहीं था, दिन न दिन होता था न रात, अग्नि वायु कुछ भी नहीं था, सत्ता नहीं थी, उसमें तत् सद्ब्रह्म इस रुचि में जो सत सुना जाता वह एकमात्र शेष था। अब आगे देखिएगा 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। मूर्ति माने आकार। जो वह मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति यानी उसका साकार स्वरूप भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। ये काल के शरीर से निकाली थी परमात्मा ने। परमात्मा ने ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान बताया था, उसी ज्ञान के सुने सुनाए को ये ऐसे बता रहा। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के आठ बुझाए हैं। ये दुर्गा है स्पष्ट हुई, इसको प्रकृति भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये आपके गीता जी में काम आओगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कोड वर्डों में लिखी हुई आपको दिखाएंगे। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, दुर्गा की महिमा है। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह समय वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, यानी इसने ही तीन रूप बनाए थे सावित्री लक्ष्मी और पार्वती के, और एक एक पुत्र से उनका विवाह कर दिया था। यह भी स्पष्ट है इसमें। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, इस काल के बारे में कहा है, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। या देखना आए हैं ये 101 पृष्ठ पर आगे हम कुछ रुद्र संहिता का। अब वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। दुर्गा की तो जानकारी पूरी हुई। अब इस काल रूपी ब्रह्म इस ज्योति निरंजन काल की महिमा है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको ब्रह्म कहो काल रूप ब्रह्म कहो सदा शिव कहो, ये काल जो है अपने पुत्र कभी शिव रूप में आ जाता है, कभी ब्रह्मा रूप में, कभी विष्णु जी के रूप में। तो उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ नाथ ने शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। वे प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म, ये सिद्ध हो गया कि दुर्गा और काल है जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। यहां देखो, देवर से ब्रह्मा बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। इन्हें सोचा कि को बालक उत्पन्न करा और उसने सारा ढूंढमा से मिलवा दें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल लिया है, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बालक की उत्पत्ति हुई। उसका नाम केदरा, वह शिव पुराण 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, इस काल ने कहा कि वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हो। अब ये हो गया छठा अध्याय यहां समाप्त। और सातवें में क्या कहता है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं देवर्षे यानी नारद जी, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके जैसे विष्णु पैदा किया, मुझे भी अपने दैन्य अंग से उत्पन्न किया। अपनात्माओं, यहां इस शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने यहां तक गड़बड़ कर दी कि भाई शिव जी से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, गोलमोल कर दिया। अब देखो उस कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती, चोर चोरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आवे सच्चाई छनी ना। ये देखिए 110 पृष्ठ पे। अब नौवां अध्याय के लास्ट में लिखा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। ब्रह्मा विष्णु और शंकर, रुद्र कहो चाहे शंकर कहो, शिव को महेश कहो, इन तीनों देवताओं में तो गुण है और ये चौथा इनका पिता इनते न्यारा है। हो गए चार न्यारे न्यारे। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु का आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा इनका कैसे होता है कि जैसे ये साधक साधना करते थे, मेडिटेशन हठ योग करके समाधिस्थ होते थे, तो काल इनको भ्रमित करने के लिए किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता, तो ऋषि महर्षि सोचते कि ये विष्णु जी देवता है, ये पूर्ण परमात्मा है, और उनको आकर पुल बांध देते कि आप ही समर्थ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, मन समाधि दशा में आपके दर्शन हुए, आप खुद परमात्मा हो, आप अपने आप को छुपाए हो। तो इस बात से विष्णु जी फूल का डोना कोपा हो जाते और सोच लिया कि मैं ही भगवान हूं। एक ने, दो ने, दस ने, बीस ने ऐसे ही कहा। फिर किसी को ये जस समाधिस्थ हो रहे किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे देता है, और वो जो थोड़ी बहुत मांगे को सिद्धि विद्धि उन्हें देकर अंतर ध्यान हो जाता समाधि दशा। तो वो क्या कहते थे कि हे भगवान, ये ब्रह्मा जी को कहते आप खुद पूर्ण परमात्मा हो, आप ही समर्थ हो, हमने समाधि दशा में आपका दर्शन पाए हैं, और आप ही समर्थ हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आप सृष्टि के रचनहार हो। और किसी को शिव रूप में दे देता है तो वो सोचते हैं शिव ही सृष्टि रचने वाला है, ये छुपाए हुए हैं अपने आप को। तो इसी आधार से ब्रह्मा जी ने तन्यो सोच लिया मैं सृष्टि करता, सब मेरे से उत्पन्न हुए, और विष्णु जी ने ये सोच लिया कि मैं सब का मालिक। एक दिन ब्रह्मा जी आ गए विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी को देखकर विष्णु उठे नहीं, ये जान करके मैं इससे बड़ा हूं और मैंने इसकी उत्पत्ति की है, जैसे उसने और ऋषि महर्षियों से सुन रखी थी। उधर से ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इसका बाप हूं, मैं इसका जनक हूं, और ये मेरी आदर भी नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा उठ, देख मैं तेरा बाप आया हूं। हाँ विष्णु जी कहे कि मैं तेरा बाप हूं, तू तेरा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। अब उन झगड़े को समाप्त करने के लिए इस काल ने सदाशिव ने बीच में एक पिलर खड़ा कर दिया, लोहे का शिवलिंग बोलते हैं उसको, वो लोहे सफेद एक नूरी एक पिलर सा खड़ा कर दिया। तो ये दोनों ने झगड़ा था छिया दिया छोड़, उसको ढूंढने लग गए उसके एंड को। कहने का भाव ये कि फिर ये शिव रूप में प्रकट हो गया। और फिर ये क्या समझाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनसे प्रसन्न किया तो काल इनको धोखा देता है कि ये तो मेरा साकार रूप है यो पिलर, और मैं निराकार रूप हूं, मैं अब तुम्हारे सामने साकार बनकर आया हूं, मैं ही भगवान हूं, तुम अपने आप को भगवान मत समझो। अब देखो विद्वेश्वर संहिता, ये वही शिव पुराण गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित, और ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश का आपस में झगड़ा हो गया था, बीच में यो स्तंभ खड़ा कर दिया, इसको लिंग बोले शिवलिंग। और ये अब 25 पृष्ठ पर हम दिखाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तव्यों के लक्षण क्या क्या हैं, क्या हैं ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले यू काल बोलिया कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब यहां देखो, यहां देखिएगा 26 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण नीचे आते हैं। अब ये काल शिव रूप में खड़ा क्या कह रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक दो कृत प्राप्त किए, ये तुमको बहुत प्रिय है। अब देखो ये तो दो तो ये हो गए ब्रह्म और विष्णु, और फिर क्या कहता है, इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, यूं मैं गलत लिखा, दो अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझ से प्राप्त किए। तो दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और दो ये रुद्र और महेश हो गए, बोलनिया पांचवा ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र और महेश इस काल के ही पुत्र हैं। ये अपने पुत्र इस शिव को ही इन 11 रुद्रों का मुखिया बनाता है, इसलिए यही एक रुद्र रूप भी धारण करता है, वैसे वो लीला काल की ही होती है। तो यहाँ ये महेश और रुद्र को 4 सुनकर आप भ्रम ना पड़ना, हमने ये देखना है कि ये ब्रह्मा विष्णु और महेश ये इनसे न्यारा है जो इनका पिता जो ये बोल रहा है जिससे इनका जन्म हुआ है। हमने 4 सिद्ध करने थे ये न्यारे न्यारे, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, रुद्र भी इन्हीं की एक अलग से इन्होंने बना रखा मुखिया, वो अलग है। तो ये ब्रह्मा विष्णु और ये महेश ये इस काल के पुत्र हैं, ये सिद्ध करना था। इनका जन्म और दुर्गा इनकी माता है। अपनात्माओं, अब वो विवेकानंद जो महर्षि रामानंद जी का शिष्य था, उसने आंखों देख लिया कि ठीक लिखा है, लेकिन अभिमान व समाना नहीं, और कहने लगा तू क्या जाने पुराणों के बारे में, तू कौन है, कहां से आया है, छोटी सी उम्र का बालक, तुझे क्या पता पुराणों में क्या लिखा है। परमात्मा तो बोले नहीं, उससे पहले वह श्रोता कहने लगे ये तो नीरू का बेटा है, ये दुल्हे का पुत्र है। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण बात बदल गया, वह तो हटाना था वहां से, उनका सबका ध्यान पलटना था, कहने लगे अरे तूने ये तिलक क्यों लगा रखा है, तूने कोई गुरु बनाया है। हाँ कहा जी गुरु बना रखा, कौन है तेरा गुरु, और तू सूदर जाति का। हाँ मैं सूदर जाति का, और मैंने गुरु बना रखा, कौन, जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। अब विवेकानंद ने कहा देखो रे लोगों कितना झूठा है, पाखंडी है, ये धाना के दुल्हा सोदर वर्ण में, और मेरे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी पंडित श्री श्री 1008 ये तो सोदरों के दर्शन भी नहीं करते, वो तो अच्छे पल्ला करके बात करते हैं। और ये कहता है देखो मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर रहा, तेरे अभी जाता हूं गुरु जी के पास, तेरी दोनों सहमत आएगी, तुझे सबक मिलेगा, और तुम भी आना श्रोता वहां पर देखना। वो बात थी वह रोला रोला दी, सच्चाई को ऊपर आने नहीं दिया। और पुण्यात्माओं कहने लगा कल देखूंगा तने, तो पुण्यात्माओं आगे कथा फिर कल सुनाओगे आपने। बोलो सतगुरुदेव। ये 5 दिवसीय सत्संग समारोह परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी की उस याद में मनाया जा रहा है कि वो परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने उस सुख में सथल को छोड़कर, उस सुख सागर को त्याग कर, अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से छुटाने के लिए, इस काल का भेद बताने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान को पुनः बताने के लिए वो परमात्मा प्रकट हुए। उस परमेश्वर ने हम बोली आत्माओं पर, अज्ञानी आत्माओं पर रहम आया, क्योंकि हमने एक ऐसी गलती की थी जो क्षमा योग्य नहीं थी। हम सतलोक में रहा करते थे, और वहां कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी, हमारा परिवार था, हमारा नूर का शरीर था, सुक्रम अकायम ऐसनाविरम। माता पिता के यहां जो योग है, सुकर यानी पांच तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं था हमारा, नाड़ी आदि के योग से वो जंतर नहीं था। परमात्मा का भी नूरी शरीर है, उनका भी शरीर ऐसनाविरम सुक्रम अकायम, वहां हमारा नूर का शरीर था, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, युवा शरीर बना रहता है, किसी प्रकार का कोई रोग कष्ट नहीं है, उसको अनाम्य शरीर बोलते हैं, निरोग रोग रहित। हम वहां पूर्ण रूप से सुखी थे, प्रत्येक वस्तु उपलब्ध थी, कोई पदार्थ का अभाव नहीं था। हमारे को एक मस्ती छागी, उस समय ये काल भगवान, ये ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये सतलोक में तप कर रहा था। इसका उद्देश्य था कि मैं अलग से राज्य प्राप्त करूं। ये तो अपने स्वार्थवश डलेड हो रहा था और हम इस पर आसक्त हो गए। जैसे कोई हीरो हीरोइन या नेता अभिनेत्री अभिनेता अभिनेता अभिनेत्री जो कोई एक्टिंग करते हैं, ये युवा वर्ग उसके ऊपर अननेसेसरी अट्रैक्ट हो जाता है, जिसका कोई यूज नहीं, उनको कोई लाभ नहीं, वो अपने पेट के लिए सारी चटक मटक करते हैं और हम उनकी तरफ आंखें फाड़े देखते रहते हैं। सिनेमा घरों में जाकर के या टीवी के ऊपर बैठ करके अपना समय और पैसा दोनों व्यर्थ करते हैं। यही रोग हमारे को वहां लगा था। ये अपना राज्य अलग मांग रहा था, उससे तप कर रहा था, तब से राज्य प्राप्त होता है, ये विधान है प्रभु का, विधाता का, और हम बेमतलब इसके ऊपर आसक्त हुए और हम अपने उस परमपिता को भूल गए जिसने हमें वहां सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। कोई रोग नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। हम अपने परम पिता से हृदय हटाकर इस काल के ऊपर आसक्त हो गए। परमात्मा ने बहुत बार हमें आकाशवाणी की कि तुम ये इसकी क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो, लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो जाते रहे और अंदर से हम इसकी कसक भुला नहीं सके। उस अंतर्यामी परमात्मा ने जान लिया कि अब ये यहां रहने योग्य नहीं रहे। उधर से काल ने जो डिमांड की 21 ब्रह्मांड वो दे दिए, पांच तत्व तीन गुण उसको दे दिए परमात्मा ने। और फिर उसने जब कुछ आत्माओं की डिमांड की तो प्रभु ने कहा कि जो सब इच्छा से जाना चाहते हैं वो तेरे साथ जा सकते हैं। तो हम फिर भी हम स्वयं सब इच्छा से इसके साथ जाने को तैयार हो गए। परमात्मा ने हमारे को वहां से निष्कासित कर दिया। हम पतिव्रता पद से गिर गए। हम ऐसा जुल्म करके यहां अपने कर्म भोग रहे हैं और जो कष्ट हमें यहां प्राप्त है ये उस गलती को देखते हुए ये कष्ट कुछ नहीं है। कीड़े पड़ जाते हैं, अधरंग मार जाता है, चार बेटे हैं, चारों मर जाते हैं, टक्कर मार रहे हैं माता पिता, ये कष्ट भी थोड़ा है। हमारे को इससे भी ज्यादा कष्ट ये काल दे सके तो वो भी कम है, क्योंकि हमने वो जुल्म किया है। वो कितने दयालु परमात्मा है, कहते हैं माता पिता बच्चे की हर गलती को क्षमा कर देते हैं। हमारे वो पिता हैं, उसी में माँ के गुण है, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव। ये वही परमात्मा है जिसमें ये सब उपमाएं हैं। वो दयालु यहां आता है, उसने हमें फिर भी अक्षमा करना चाहा है। इस दौरान काल ने हमें इतना मिसगाइड कर दिया कि हम भगवान को भूल चुके हैं, हमें वो परमात्मा याद भी नहीं रहा। लेकिन आत्मा को ये भूल नहीं पड़ी है कि कोई परम शक्ति है जो दुखी को पूर्ण रूपेण सुखी कर सकता है। उसी की तलाश में, उसी की खोज में, किसी ने बताया किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, हम वहां भी चले गए। किसी ने बताया जंगल या गुफा में, हम वहां भी चले गए। किसी ने बताया कि दरिया में स्नान करने से मोक्ष होगा, हम वहां भी पहुंच गए। लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों ही रही, क्योंकि काल भगवान ने परमात्मा की परिभाषा बदल रखी है और स्वयं वो अपने आप को प्रभु बनाकर बनकर के सबको कंट्रोल किए हुए है। उसी के रिमोट से, उसी की पावर से यहां सभी प्राणी इतना कष्ट उठा रहे हैं और जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। इस अज्ञान को हटाने के लिए वो परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत दया की थी कि ये भोली आत्मा चले तो गए, इनको मेरी याद सतावेगी, ये जी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा के बिना ये आत्मा रह नहीं सकती। और जिस दिन से बिछड़कर आई है, कुछ दिनों के बाद ही इसको उसकी याद सता रही है। लेकिन उसके पाने की का मेथड जो है, इस काल ने पूर्ण रूप से गुप्त करवा दिया, नष्ट करवा दिया। सतलोक जाने के लिए, उस सनातन परमधाम को पाने के लिए, वो मार्ग बताने के लिए परमेश्वर स्वयं आए हैं। अब ये जो समागम चल रहा है 5 दिवसीय, ये उसी याद में है। आत्मा को ऐसा झटका लगता है जब ये बातें याद आती हैं कि हम किस कितने नीच हैं, हम यहां कितना कष्ट उठा रहे हैं। आज अरबपति बन गया 2 नंबर का, या जैसा भी कर्म करके, कल मृत्यु होगी। वो अरबपति, वो फैक्ट्री और वो सारी संपत्ति कहां है तेरी? कितना बड़ा धोखा हमारे साथ इस काल ने कर रखा है। लेकिन हमारी बुद्धि एक जीव सतर की है, और इस बुद्धि का उत्थान भी परमात्मा के ज्ञान और उसके सहयोग और सहारे से ही हो सकता है। हमें ज्ञान भी हो गया, परमात्मा का साथ है नहीं। परमात्मा का साथ आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप परमात्मा की मर्यादा और नाम को सुचारू रखोगे, नाम खंडित ना होगा। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया पावर का, बिजली का, और कनेक्शन जब तक सही है, बिजली आ रही है, आपके सब कार्य पावर सतर से हो रहे हैं। कनेक्शन कट जाए किसी भी कारण से, तो कोई भी सुविधा आपको पावर सतर की नहीं होगी। इसी प्रकार आप जी को ज्ञान भी हो गया और नाम खंडित हो गया, परमात्मा का हाथ हट गया, तो फिर भी उस ज्ञान पर आप रुक नहीं सकोगे। परमात्मा के ज्ञान तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि गीता जी 10:4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, दर्वमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, हम कहीं धर्म भंडारे करते हैं, धर्म पर 2 पैसे लगाते हैं, ये यूजलेस है। ज्ञान हो जाएगा फिर हम सुचारू रूप से लगाएंगे और मोक्ष भी पाएंगे। तो ज्ञान प्रथम है, उसके बाद नाम का सहारा और परमात्मा का सहयोग। 15 दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस, जम किंग कर चंपैनी, तुम्हारा उधर जाएगा वंश। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा के मार्ग को सुरक्षित रखना है, परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे, ऐसा हमने करना है। तो उस ज्ञान को जो हमारे को आवश्यक है, उस ज्ञान को प्रदान करने के लिए परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। इस काल भगवान को परमात्मा ने 5 वेद दिए थे, इसके अंदर फीड कर दिए थे। जैसे आजकल एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी फिल्म की फिल्म फैक्स हो जाती है, ऐसे परमात्मा ने ये ज्ञान इसमें, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया था। और समय आने पर उसको परमात्मा ने इसके अंदर से बाहर उगलवा दिया। जैसे समय आने पर माता गर्भ धारण करती है, फिर समय आने पर बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, ऐसे परमात्मा ने विधान बनाया कि जब ये बच्चे थोड़े स्याने हो जाएंगे, क्योंकि वहां ये पहुंचेंगे, इनको ये दुर्गति तो करेगा ही करेगा, फिर ये इनको इस ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और फिर ये मुझे पहचान लेंगे। तो इस काल ने अपने श्वासों से ये पांचों वेद बाहर निकाल दिए, समुन्द्र में डाल दिए। इसने पहले इनका निरीक्षण किया। पांचवा वेद जो था वो परमात्मा कबीर जी के प्रत्यक्ष विषय में लिखा हुआ था और उसके पाने की पूरी विधि उसमें वर्णित थी। इस काल ने सोचा कि यदि प्राणियों को उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया तो यहां कोई नहीं रहेगा, और वहां के सुख का इनको पता लग गया तो ये कोई नहीं रहेगा, तेरा राज्य उजड़ जाएगा। इस दृष्टिकोण से इसने वो सूक्ष्म वेद नष्ट कर दिया। उस यथार्थ ज्ञान को बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। उसी उद्देश्य से परमात्मा कलयुग में संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह एक कमल के फूल पर प्रगट हुए थे। वहां नीरू और नीमा नाम के जुल्हा दंपत्ति परमात्मा को उठा लाए थे, वो निसंतान थे। परमात्मा 25 दिन के हो गए, कुछ आहार किया नहीं। माता पिता को चिंता घड़ी हुई, मुंह बोले माता पिता, बहुत बुरी तरह विलाप किया नीमा ने। तब परमात्मा, क्योंकि वो पहले हिंदू थे, हिंदू से फिर उनको बाई फोर्स मुसलमान बना दिया गया था, मुसलमान बने हुए भी उनको 20-25 वर्ष हो गए थे, फिर भी भगवान शिव की भूल उनको पड़ी नहीं थी। भगवान शिव को याद करते रहे, तो भगवान शिव अपनी शिवपुरी से यानी शिव के लोक चलकर आए, एक साधु रूप बना गए, और फिर परमात्मा से उनकी वार्ता हुई। 25 दिन के बालक के साथ शिव जी बोले, बात करी, तो परमेश्वर ने शिव जी से कहा कि कुंवारी गाय कहो, इनको कुंवारी गाय ले आओ बच्चिया, उस पर आप अपना हाथ रख देना। शिव जी, परमात्मा ने कहा, वो दूध दिया करेगी, उस दूध का मैं पान करूंगा। ऐसा ही हुआ। ये आपको कल के सत्संग में बता दिया था, आज नए भक्त आए उनको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। तो उसके बाद परमात्मा कबीर परमेश्वर जी उस कुंवारी गाय का दूध पीकर एक लीला में शरीर में बड़े होते हुए, बड़े हुए लीला करते हुए, जो प्रत्येक युग में वो किया करते हैं, और इसी का प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है तो उसकी लीला में शरीर की परवरिश कुंवारी गायें से होती है। तो पुण्यात्मा, जिनको हम भगवान माना करते थे, किसी भी प्रभु की लीला में या उनके जीवनी में ऐसा उल्लेख नहीं है। इससे सिद्ध है कि वो प्रभु नहीं थे, इससे यह भी सिद्ध हुआ कि कबीर इज गॉड, ये कबीर परमेश्वर है, और वो स्वयं आकर के प्रत्येक युग में अपनी प्यारी आत्माओं को, हम इतने नालायक और निकम्मे थे कि हमने भगवान भूला, आज हम इतना कष्ट उठा रहे हैं। इस पृथ्वी पर कोई प्राणी सुखी नहीं है पुण्यात्माओं, लेकिन हमने सुख का जो डेफिनेशन भी भूल गया। एक व्यक्ति के 3 लड़के थे और एक की मृत्यु होगी, टक्कर मार रहा सारा परिवार, वहां एक शोक व्यक्त करने के लिए एक व्यक्ति आ गया। अन्य व्यक्ति कहने लगे, भाई तेरे तो 2 पुत्र तो जीवित हैं, एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इस बेचारे का देख, एक ही था, इकलौता पुत्र ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उस व्यक्ति ने, जिसके 2 पुत्र शेष, एक मर गया था, राहत की सांस ली, अब तो खाए भगवान, इस तो मैं सुखी, टट्टू सुखी, बता जिसका बेटा मर गया के सुखी। तो कहने का भाव यह कि हम इतनी ही राहत को सुख मान रहे हैं, और शेष जो बच रहे उनका क्या पता ये कितने दिन और रहेंगे, क्या राहत हुई। तो परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कह, ये मान रहा मनबोध, ये सकल जबी ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। ये सारी बातें याद दुआ कर परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं, इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट करो, तुम यहां भी सुखी और अंत समय में तुम्हें जहाज में बैठा कर ले जाऊंगा। देखो कई भक्त कहते हैं क्या तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, बाकी सब मर जाएंगे। मृत्यु हमारी होगी लेकिन आम व्यक्ति जैसी नहीं होगी, जो भक्तिहीन प्राणी जैसी नहीं होगी। आए हैं सो जाएंगे, ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जा, एक बंधे जा जंजीर। मृत्यु में बहुत अंतर होगा, एक तो अपराधी की तरह बांध कर ले जाएंगे यम के दूत, जो भक्ति ठीक नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं उनको। और जो परमात्मा कबीर जी के हम सत साधना कर रहे हैं, आजीवन मर्यादा में रहेंगे, वो विमान में बैठ गए परमात्मा उनको लेकर जाएगा। तो आने में और जाने में कितना अंतर हो गया। तो इस ज्ञान को देने के लिए परमात्मा स्वयं आए। फिर परमात्मा के नामांकन का समय आया, नाम धारण के लिए, नामकरण करने के लिए, नामकरण करने के लिए काजी आगे कुरान लेके, और वो क्या करते हैं, कुरान शरीफ को खोलते हैं, एक बुक है, वो होली बुक है, पवित्र किताब है, और उसमें जो प्रथम पृष्ठ पे प्रथम अक्षर जो होता है, जो लेफ्ट साइड का जो प्रथम अक्षर होता है प्रथम पंक्ति में, उस आधार से ये नाम रखते हैं। तो उसमें लिखा था कबीर, प्रथम लाइन में कबीर वर्ण लिखा था, कबीर का अर्थ होता बड़ा, ये मानते हैं कबीर बिन बड़ा, जो फारसी भाषा में कबीर का अर्थ बड़ा होता है। तो उन्होंने सोचा कि ये छोटा सुदर वर्ण का व्यक्ति, एक गरीब दुलाहे का, इसका नाम बड़ा रखना अच्छा नहीं लगता। फिर क्या किया उन्होंने, पुनः फिर कुरान शरीफ को बंद किया, दोबारा फिर खोला, फिर वही पृष्ठ, उन्होंने फिर वहां जानबूझकर कोई और अलग से खोला, तो उस पूरे पृष्ठ पर कबीर 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 लिखा हुआ था, कुरान शरीफ के लेख नहीं थे। पूरी कुरान शरीफ को देखा तो पूरी कुरान शरीफ में ओनली कबीर 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 लिखा हुआ था, अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर। अब काजियों ने नाम नहीं रखा, परमात्मा ने कहा कि काजी मेरा नाम कबीर ही रहेगा। नवजात शिशु ऐसे बोला तो काजी भी खिसक गए, क्योंकि परमात्मा चारों युगों में अपना एक एक नाम पूर्व निर्धारित है, उसी को प्रकाशित करते हैं, उसी में सुप्रसिद्ध होते हैं। और ये कबीर नाम परमात्मा का ओरिजिनल नाम है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है, प्रधानमंत्री उनकी पोस्ट का नाम होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर भाषा भिन्न में बोल देते हैं। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म, परमक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, परमात्मा, ये तो पोस्ट के नाम, उपमात्मक नाम है। ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। अब हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। कल हम यहां तक पहुंच गए थे कि परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष की आयु लीला में वो शो कर रहे थे, उसी समय 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप धारण करके गंगा घाट पर बनी हुई पौड़ियों पर जाकर लेट गए थे। उधर से 104 वर्ष के वयोवृद्ध महर्षि रामानंद पंडित, वो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, उस गंगा घाट पर प्रतिदिन सुबह सुबह स्नानार्थ जाया करते थे। रामानंद जी प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वो नीचे पौड़ियों में उतर रहे थे, कबीर परमेश्वर 2.5 वर्ष बच्चे का रूप धारण करके लेटे हुए थे, उनके सिर में खड़ाऊं लगी, स्वामी रामानंद जी की। रामानंद जी एकदम झुके, शीघ्रता से किसी बालक का चोट लगी, भगवान एक लीला में तरीके से रोने लगे जैसे बच्चा रोता है, और उनके गले में एक कंठी होती है तुलसी के मन का, ओनली वो प्रतीक है वैष्णो परंपरा का कि एक तुलसी का मनके की जो माला उसको कंठी बोलते हैं, वो कंठी जिसने धारण कर रखी है वो अंडरस्टूड है कि वो वैष्णो परंपरा से उपदेशी है, दीक्षित है। तो वो कंठी स्वयं भी रामानंद जी ने धारण कर रखी थी, वो कंठी निकलकर कबीर परमेश्वर जी के गले में अंधेरे में डल गई। रामानंद जी ने कहा बेटा बैठ जा, मैं तेरे घर भिजवा दूंगा, तू रास्ता भूल गया दिख रहे। वो स्नान करने लगे महर्षि, तो परमात्मा अंतर ध्यान हुए अपने मुंह बोले माता पिता की कुटिया में विराजमान हो गए। कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने क्या किया, एक महर्षि रामानंद जी का शिष्य ऋषि विवेकानंद कहीं सत्संग कर रहा था, विष्णु जी की उपमा कर रहा था, परमेश्वर कबीर जी ने उससे पूछा कि क्या विष्णु जी के जन्म मृत्यु होती है, क्या विष्णु जी के कोई माता पिता भी हैं। इस पर विवेकानंद ऋषि जी ने कहा कि तुम बालक हो, आपको इतना भी नहीं पता कि ये विष्णु जी अजर अमर हैं, सर्वेश्वर महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इनके कोई माता पिता। तब परमेश्वर ने उस विवेकानंद को जहां पर हजारों उसके उपदेशी और श्रोता विराजमान थे सैकड़ों की संख्या में, वहां परमेश्वर ने कहा कि नहीं आप गलत कह रहे हो स्वामी जी, शिवपुराण रुद्र संहिता 5, 6, 7, 8, 9 मंत्र अध्याय में और विद्वेश्वर संहिता प्रथम अध्याय में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि दुर्गा इनकी माता है और ये काल रूपी शिव इनका पिता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। विवेकानंद जी ने स्वयं देख भी लिया, शास्त्र उसके पास थे, फिर भी वो माना नहीं और ऊपर से उस बात को सबकी ध्यान परिवर्तित करने के लिए, ध्यान बांटने के लिए कहने लगा कि तूने तिलक कैसे लगा रखा है, एक लंबा तिलक या नाक पर पूरा सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं ये वैष्णो परंपरा वाले, अरे यह यही रीति न्यू की न्यू अब कबीर पंथ में समागी। ये भूल रहे हैं कि कबीर जी ने वो किस उद्देश्य से किया था खेल, तो वो भी प्रतीक था कि विष्णु परंपरा से ये उपदेशी है। तब उस विवेकानंद ने पूछा कि तूने कहीं से उपदेश ले रखा है, दीक्षा ले रखी है कि हाँ दीक्षा ले रखी है। तो स्वामी जी ने पूछा कि तेरा गुरु कौन है, विवेकानंद जी ने पूछा कबीर परमेश्वर से तेरा गुरु कौन है, परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा गुरु है वही मेरा गुरु है। इस बात से बहुत अक्षुब्ध हुआ विवेकानंद, क्योंकि विवेकानंद को पता चला कि ये सूदर वर्ण से संबंध रखता है, ये धानक जुलाहे का पुत्र है, क्योंकि वह उपस्थित जनों ने तुरंत खड़ा होकर बता दिया था कि ये धानक का पुत्र है, जुलाहे का पुत्र है, नीरू को कहीं मिला था वो है ये। तो उसी समय वो कहने लगा कि तू सूदर वर्ण का होकर के कहता है रामानंद जी से मैंने दीक्षा ले रखी है, देखो रे लोगों ये कितना झूठा और कपटी है, इसे सोच लेना ये सब झूठ बोल रहा है, हमारे स्वामी रामानंद जी कभी किसी को दीक्षा नहीं देते, वो बहुत ज्यादा छुआछात किया करते थे और सूदर वर्ण से तो वो बिल्कुल हेट करते थे, पल्ला कर लेते थे, पर्दा कर लेते थे, बात करते हुए भी उसे शकल नहीं देखते थे। और ऐसे व्यक्ति के बारे में ब्राह्मण समाज और अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित थे और वहां ये कहना कि मैंने रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी, और आम व्यक्ति को ये हो गया कि ये झूठ बोलता है, और ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता की जानकारी भी झूठी ही दे रहा होगा। और यही विवेकानंद चाहता था, तेरी इज्जत बनी रहे, ये श्रोता धोखे में पड़े रहे और ये मेरी जो है ना दाल रोटी चलती रहे। इनका यहीं तक बुद्धि सीमित रही, इन ऋषि गुरु महर्षियों की। उसमें विवेकानंद जी ने कहा कि श्रोताओं, कल सभी आना स्वामी जी की कुटिया पर, रामानंद जी की कुटिया पर, और उनके सामने मैं अर्ज करूंगा कि हमारी तो नाक काट ली इस दुलाहे के पुत्र ने, इसने भरी सभा में आपको अपना गुरु बता दिया, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, देखना सच्चाई का कल पता चलेगा। अब शाम को जाकर के विवेकानंद जी ने, जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे, स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारी तो नाक काट ली, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। स्वामी जी ने पूछा क्या बात हुई, सारी कहानी बता दी कि एक दुलाहे का बेटा आपको अपना गुरु बतावे गुरुवर, और सभी वहां सैकड़ों की संख्या में, कई सैकड़ों की संख्या में श्रोता उपस्थित थे। उसने सरेआम कहा यह कि मैंने रामानंद जी से नाम ले रखा है, और वो तिलक भी लगाता है मत्थे पर, ऐसे ही लगाता है। रामानंद जी का पारा 100 पर चला गया एकदम आई, और कहने लगा वो झूठा है, वो कपटी है, कल उसकी सब असलियत सामने आ जाएगी, उसको बुला कर लाओ। अब सुबह सुबह वो विवेकानंद और 8-9 मलंग लेकर लठाणेर चल पड़ा परमात्मा कबीर जी की कुटिया की तरफ, जहां वो रहा करते थे जुलाहों की कॉलोनी में। किसी व्यक्ति ने देखा कि ये कोई घर पूछ रहे हैं, उन्हें कबीर नीरू का घर पूछा और उनके इरादे से वो परिचित हुए। इसी प्रकार एक बहन को पता चला, उनको उन्होंने कुछ रास्ता नहीं दिया, वो तो कहने लगे पूछ लो कहीं आगे, वो किसी और से घर पूछने लगे। तब तक वो दोनों आगे सीधर शीघ्र आ गए आगे, पहले एक बहन आई, फिर एक भक्त ने, एक व्यक्ति ने आके यही बताया कि एक ब्राह्मण है, उसके साथ 7-8 लठ वाले हैं और तुम्हारा घर पूछ रहे हैं, अब तुम सावधान हो जाओ, उसके उनके इरादे नेक नहीं है। अब नीमा समझ गई कि ब्राह्मण है, क्योंकि उससे पहले भी कबीर परमेश्वर जी इन नकली गुरुओं को जहां भी खड़े वो चर्चा हो रही होती थी, ये परमात्मा उनसे प्रसन्न किया ही किया करते थे, और उनके उल्हाने आते थे। नीमा और नीरू को आकर कहते थे कि अपने बेटे को मना कर दो, इनको समझा लो, ये हमारे सत्संग में बाधा डालता है। और परमात्मा बताया करते, तुम गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हो, इनको विष खिला रहे हो अपने श्रोताओं को, तुम सत्य से परिचित नहीं हो। और नीमा धमकाया भी करती थी, बेटा तुम मत छेड़ा कर, ये तो राक्षस टाइप के व्यक्ति हैं, बेटा तुझे कभी मार देंगे। तब कबीर परमात्मा कहा करते कि माताजी मेरे बस की बात नहीं, मैं तो इनको समझाने की चेष्टा करता हूँ, ये सब मेरे ही बच्चे हैं, मैं इनको सही ज्ञान बताना चाहता हूँ, ये मुझे पहचानते नहीं। इस बात से माई भी अक्षुब्ध हो जाया करती कि पड़ा रहे तू दादा पाक गया, 5 साल का बालक ने कहा मेरे बच्चे हैं, तू घना ना बोला कर, अरे बेटा तू मत छेड़ा कर इनको। तो उसको इस दिन भी उसको तुरंत उसके हृदय में गया कि अवश्य ही कोई गड़बड़ करके आया कल, और आज तो भयंकर रूप धारण कर रखा उन्होंने, जो लठ लेकर आ रहा था। माता ने बच्चे को उठाया सूता, परमात्मा को तो सोए जागे बराबर ही होते हैं, खड़े हो गए। पूछा, माता ने पूछा, बेटा तूने कल किसी के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी ब्राह्मण से? अक नहीं माता जी, छेड़छाड़ तो नहीं की थी, मैंने तो प्रसन्न किया था। वह बोली, तू इन प्रसन्न करना छोड़ दे बेटा, वो आने लग रहे हैं, और चल तुझे छुपा देती, तू बोलिए मत, छुप जा। झोपड़ी के पीछे जाके लिटा के ऊपर कपड़े डाल दिए, गुदड़गा बा डाल दिया, अब तू बोलिए ना बेटा, अब ठीक है। अब इतने में वो आगे आते ही बोले कहाँ है वो तुम्हारा पुत्र, वो कबीर कहाँ हमें दो, आज उसको स्वामी जी के सामने ले जाएंगे, उसकी वहां पिटाई होगी। अब नीमा कहने लगी क्या बात होगी, क्या गलती कर दी मेरे पुत्र को, मैं धमका दूंगी खुरका दूंगी, आगे नहीं करेगा। वो कहने लगे नहीं हमें दो, वो कहाँ है। यूं कहते कहते वो अंदर चले गए। उस कुटिया में झोंपड़ी में जो भी चारपाई थी वस्त्र थे सब खिंडा मंडा दिए, कहाँ छुपा रखा है। और माता हाथ जोड़कर कह रही है मेरे बच्चे पर रहम करो, बालक है, बच्चे तो गलती कर ही दिया करते हैं, आप तो महान हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो। और उल्ला लाख हो रही विवेकानंद की, क्यों उसकी तपोल खुलगी नकमेगी। कहने लगा दूर हो जा तू, बता नहीं तो कहानी तेरी टांग तोड़ दूंगा। अब पुणात्माओं देवी भागवत में लिखा है प्रथम सकंद में कि ये कलयुग के जो ब्राह्मण हैं, कलयुग में जो ब्राह्मण हैं वो ऐसे हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होया करते हैं। और ये प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है। उधर परमात्मा ने देखा कबीर जी ने कि ये माता जी को तंग कर रहे और ये टांग तोड़ देंगे माँ की। बाहर खड़ा होकर वो एकदम खड़े हो गए वहीं पर और कहा विवेकानंद आजा, झोपड़ी के पीछे खड़ा हूं मैं। अब विवेकानंद आवाज सुनते भाग कर गए सारे पर और पकड़ लिए परमात्मा को बाजू से। उधर से नीमा ने अपने बच्चे को छुटवाना चाहा, उसके लिपट गई, अपने बच्चे को ऐसे लिपट गई। बच्चा तो नहीं था, वो तो हमारा बाप था, पिता था सबका, लेकिन लीला कर रहा था दाता। उधर से सर्वानंद ने उसके हाथों पर लठ मारे और उसके गुंडों ने वो माता के, और वो हाथ छुड़वा दिए, बुरी तरह पीट कर छोड़ दिया। उधर से नीरू को जो पता चला क्या झगड़ा हो गया, वो भाग आया, उसने भी विरोध किया, बच्चे को छुड़वाना चाहा तो उसकी भी बहुत पिटाई कर दी और बेहोश करके गली में डाल दिया। परमेश्वर को उठाकर वो ले गई। वहां रामानंद जी अपनी कुटिया में बैठे थे, स्नान कर आए थे। वो प्रतिदिन जो कर्मकांड किया करते थे वो करने की तैयारी कर रहे थे। विवेकानंद ने कहा जी ये आ गया है वो नीरू पुत्र, जुलाहे का बेटा कबीर, जो आपको अपना गुरु बताता है। रामानंद जी ने अपनी कुटिया के सामने पर्दा ला लिया और कबीर जी बाहर खड़े हैं, रामानंद जी कुटिया के अंदर, और हजारों की संख्या में श्रोता वहां विद्यमान है, क्योंकि विवेकानंद तो सबको न्योता दे के लाया था कि कोई और न्यो ना कहे। विवेकानंद से एक प्रश्न किया था, जवाब नहीं आया, जवाब तो टाल दिया और ये और पंगा पा दिया। लेकिन परमात्मा तो अपने बच्चों के लिए आए, इस उद्देश्य से थे, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, बुरा कहे चाहे भला कहे, मालिक ने तो अपने ज्ञान को उजागर करना था, जिनको शरण में लेना है वो लेना ही था। अब रामानंद जी को शरण में लेने की ये सब कुछ कर रहे थे परमात्मा, कितना कष्ट उठाया, बुरी तरह बेइज्जत हुए, लेकिन माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कष्ट उठा सकते हैं। और ये तो सबका पिता सबका माता, हम सभी उन्हीं के बच्चे हैं। अब रामानंद जी ने पर्दे के अंदर से आवाज ऊंची आवाज में पूछा कि कौन तुम्हारी जात है और कौन तुम्हारा भगवान है, किस पंथ से तुम जुड़े हुए हो, तब क्या वार्ता होती है ये परमात्मा और उस आत्मा की, परमात्मा कबीर जी और आत्मा उस रामानंद जी की क्या चर्चा होती है, ये आपको सुनाते हैं। आड़ा पर्दा लाए कर रामानंद बुजंते, दास गरीब कुरंग छवि अधर धार कूदंत, अधर डाक कूदंत, जैसे मर्ग को जाकर खड़े। कहते हैं आड्डा पर्दा ला के रामानंद भूजंत, और गरीब दास साहेब जी जो परमेश्वर से परिचित हुए थे। परमात्मा गरीबदास जी को सतलोक लेकर गए थे, उनकी आत्मा को फिर वापस शरीर में छोड़ा था। उन्होंने आंखों देखा और पीछे का और आगे का दृष्टि से सर्विवरण परमात्मा की महिमा का ये आंखों देखा चित्रण किया। उस आधार से अगर गरीबदास जी कह रहे हैं कि ऐसे कूद रहा रामानंद जी कुटिया में जैसे मर्ग कूद जाकर गुस्से में कि तूने कैसे कह दिया, और कहता है कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीब दास जी कहते हैं वो परमात्मा बलिहारी था उस परमेश्वर पे 5 वर्ष की आयु में। जब रामानंद जी ने ये पूछा कौन जात कुल पंथ है और कौन तुम्हारा नाम।